अभिमन्यु को इस तरह अपने ख्यालों में खोता देखकर इप्सिता की नजरें अभिमन्यु के चेहरे पर ही टिक गई थीं। उन दोनों को ऐसे चुप होते देखकर नंदिनी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, हे गाइज, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ जीजू, क्या सोचने लगे आप? नंदिनी की आवाज सुनते ही मानो अभिमन्यु अपनी नींद से जागा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। चलिए, शाम होने वाली है, हम आप दोनों को घर ड्रॉप कर देते हैं। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आगे चलने लगी। इप्सिता ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको हमें ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम राजकुमारी इप्सिता, आइए चलिए हमारे साथ, और वैसे भी आपकी कार पहले ही आपके घर पहुँच गई है। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने हैरानी से कहा, क्या? अभिमन्यु ने उस होटल से बाहर निकलते हुए कहा, जी हाँ, हमने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था, वो आपकी कार पर आई डेंट को ठीक कराकर आपकी कार आपके घर पहुंचा देगा, आप चलिए। नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ जीजू चलिए, और इसे तो आदत है, फालतू के क्वेश्चन जरूर पूछती है। इप्सिता एकटक अभिमन्यु की ओर हैरानी से देख रही थी, उसने नंदिनी की बात सुनकर उसकी ओर देखा। तब तक नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अभिमन्यु के पीछे पीछे ले आने लगी। अभिमन्यु कार का गेट खोलकर इप्सिता की ओर देखने लगा। नंदिनी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, ओके, तो मैं आगे बैठ जाती हूँ, आप दोनों पीछे बैठिए। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्सिता का हाथ छोड़ा और खुद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। नंदिनी को इतनी जल्दी कार के अंदर बैठे देखकर इप्सिता और अभिमन्यु को भी एक साथ कार की बैक सीट पर बैठना पड़ा। इप्सिता इनडायरेक्टली बार बार अभिमन्यु की ओर ही देख रही थी, लेकिन अभिमन्यु काफी सीरियस होकर अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन की ओर ही देख रहा था, और पूरे रास्ते उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। और उन दोनों के इस तरह चुप रहने पर नंदिनी ने तो अपना सिर ही पीट लिया। नंदिनी अपने मन में बोली, क्या बेवकूफ दोस्त है मेरी, ऐसे चुप बैठी है जीजू के साथ जैसे कि उन्हें जानती तक नहीं। ऐसी खामोशी देखने के लिए तो एक साथ नहीं बिठाया मैंने इन दोनों बेवकूफों को। अपने मन में ये सब बोलते हुए नंदिनी का भी मुंह बन गया, लेकिन वो भला इसमें क्या ही कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो तीनों सूर्यवंशी हवेली पहुंच गए। इप्सिता जल्दी से कार से बाहर निकली और उसने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच आज हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। अभिमन्यु ने इप्सिता की ओर देखकर कहा, इप्सिता, हमने आपसे पहले भी कहा था, आपको हमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे से प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अंदर चली गई। इप्सिता नंदिनी के साथ हवेली के अंदर आ ही रही थी कि तभी नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार जीजू तो सच में कमाल के हैं, उन्होंने कितनी आसानी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, है ना? अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर कुंवर उनका नाम यूं ही नहीं पड़ा, इप्सिता, यू आर सो लकी। इप्सिता ने नंदिनी को डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप, क्या लकी, हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए और तुम बेकार में ही ये सारी बातें हमसे मत बोला करो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इप्सिता इतना बोलते हुए अंदर आई और उसने देखा कि उसके मम्मी पापा और भाई तीनों लिविंग एरिया पर बैठे थे और सबके चेहरे पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन था। नंदिनी ने जैसे ही सबको देखा उसने इप्सिता के कान के पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, यार तुम्हारे मम्मी पापा को क्या हुआ, इतने ज़्यादा सीरियस मूड में क्यों लग रहे हैं, कहीं उन्हें तेरे एक्सीडेंट की बात पता तो नहीं चल गई? इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने नंदिनी को घूरते हुए कहा, अगर नहीं भी पता चली होगी तो मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि तुम उन्हें चिल्ला चिल्ला कर ये बात बता दोगी। नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और इप्सिता ने उसे घूर कर देखते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, प्लीज़ चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। नंदिनी ने तुरंत इप्सिता की बात मानकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहीं अपनी जगह पर रुक गई। लेकिन इप्सिता धीरे धीरे अंदर की ओर आई और अपने मम्मी पापा के सामने खड़े होते हुए बोली, मम्मी पापा व्हाट हैपेंड, आप लोग इतने ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्सिता की मम्मी इप्सिता के पापा की ओर देखने लगी। तभी इप्सिता के पापा अपनी जगह पर उठकर खड़े हुए और उन्होंने इप्सिता को घूरते हुए कहा, कहाँ गई थी आप अकेली? इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने नंदिनी की ओर देखा, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इप्सिता के पापा उसके सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने इप्सिता को घूरते हुए कहा, हमने आपके लिए संजय को क्यों रखा है, ताकि आप सेफ रह सकें और किसी प्रॉब्लम में ना फंसें, राइट? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस पापा। इप्सिता के पापा ने उस पर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो फिर आज तुम बगैर संजय को लिए घर से बाहर क्यों निकली? इप्सिता घबराते हुए बोली, वो डैड, एक्चुअली। इप्सिता के डैड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, अगली बार आप घर से बाहर अकेली नहीं जाएगी, आपके साथ आपका बॉडीगार्ड संजय या फिर ड्राइवर साथ में जरूर होगा, आप हमारी बात समझ रही हैं ना? इप्सिता के पापा का अचानक से इस तरह से सॉफ्ट होना इप्सिता को समझ नहीं आया और उसने अपने मन में कहा, ये पापा को अचानक क्या हो गया, वो अभी तो इतने गुस्से में थे और अब इतनी शांति से कैसे बात कर रहे हैं मुझसे।
नंदिनी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। तभी इप्सिता के डैड ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, इप्सिता आई होप आप हमारी बात समझ गई होगी। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और इप्सिता के पापा ने कहा, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। इप्सिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और चुपचाप अपने रूम की ओर चली गई। इप्सिता को जाते देखकर इप्सिता के पापा ने अपनी पत्नी सुहासिनी जी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। जैसे ही इप्सिता नंदिनी के साथ अपने रूम में पहुंची तो इप्सिता ने जल्दी से रूम अंदर से बंद किया और बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कमरे के अंदर आते ही नंदिनी ने कहा, यार बाय गॉड मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हारे डैड ने तुम पर गुस्सा नहीं किया, वो इतनी शांति से तुम्हें बात कैसे समझा रहे थे। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं कि अचानक से पापा को क्या हो गया, वो हमें डांटते डांटते इतनी सॉफ्ट कैसे पड़ गए और क्या उन्हें हमारे एक्सीडेंट वाली बात पता चल गई होगी। नंदिनी ने इप्सिता के मुंह से बात सुनकर अपना सिर पीटते हुए कहा, पागल हो गई है क्या, तुझे अगर उन्हें तेरे एक्सीडेंट की बात पता होती तो तुम्हें लगता है कि वो इतनी आराम से जो बात कर रहे थे वो वैसे बातें करते, उन्हें एक्सीडेंट की बात नहीं पता चली होगी। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता कुछ सोच में पड़ गई। नंदिनी ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा, वैसे आज का दिन काफी ज्यादा टायरिंग था, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इप्सिता ने नंदिनी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। नंदिनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। इप्सिता ने अपने मन में कहा, मिस्टर अभिमन्यु सच में एक बहुत अच्छे इंसान है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया, उस लड़की ने भला ऐसा क्यों किया होगा। अगली सुबह अभिमन्यु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था और उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया और आज के शेड्यूल के बारे में बात करने लगा। सारी चीजें क्लियर करने के बाद अभिमन्यु लैपटॉप में अपनी कुछ डील्स चेक कर रहा था। अभिमन्यु की असिस्टेंट केबिन से बाहर जाने लगी और दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़का खड़ा था। उसने अभिमन्यु की असिस्टेंट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर।
उस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर सामने खड़े उस लड़के ने कहा, ओह कम ऑन, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी जैसी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल अगर मुझे सर बोलेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, नाम लिया करो मेरा तुम तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस आदमी की बात सुनकर अभिमन्यु की असिस्टेंट मुस्कुराकर वहां से चली गई। बाहर से अभिमन्यु के केबिन का दरवाज़ा खुला और एक बड़ा ही हैंडसम लड़का केबिन के अंदर आया। वो दिखने में अभिमन्यु की उम्र का ही लग रहा था और वो बिना नॉक किए ही केबिन के अंदर आ गया। क्रमशः क्या लगता है आप लोगों को, इप्सिता के पापा ने जिस तरह से पहले उस पर गुस्सा किया था, क्या उन्हें एक्सीडेंट वाली बात पता चल गई है या फिर वो बस उसके अकेले बाहर जाने की वजह से गुस्सा थे? क्या लगता है आप लोगों को, अगर उन्हें पता चलेगा एक्सीडेंट के बारे में तो कैसे पता चलेगा और तब क्या होगा उनका रिएक्शन, और कौन है ये न्यू एंट्री, क्या लगता है आप लोगों को?